तो आप ये जानना चाहते हैं कि संसारी बातें सोच सोच के कई बार बुद्धि बड़ी बेचैन हो जाती है, तो इसका संबंध प्रारब्ध से कितना है? ये तो हम सब जानते ही हैं कि मनुष्य जिस समय से जागता है सोकर, मन के अंदर विचार चलना शुरू हो जाते हैं, और जितने भी विचार चलते हैं या तो दिन भर जो आपने काम करने हैं उसके बारे में चलते हैं, या कोई खुशी प्राप्त करनी है दिन भर में, जिसको हम सुख कहते हैं, उसके बारे में चलते हैं, या कोई काम बिगड़ने की संभावना है तो उसके बारे में चलते हैं, और जितने भी कर्म दिन भर में हमने करने होते हैं उसका फल मन अनुकूल होगा या नहीं इसके बारे में भी चलते हैं। और ये जितनी भी विचार, जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब ही अनिश्चित हैं। इसमें एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो बिल्कुल निश्चित हो कि वो हो जरूर होगी, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जिस साधन को हम सुख का साधन समझ रहे हैं वही साधन हमारे लिए कल को दुख का कारण भी बन सकता है, हम नहीं जानते। जैसे कि सब जानते हैं कि सारी दुनिया वाले अपनी या अपने बच्चों की शादी की सोचते हैं तो ये सुख रूपी कर्म है, विवाह करना ये सुख का साधन है, लेकिन हम सबका एक्सपीरियंस है कि ये सुख की बजाय कई बार दुख का साधन बन जाता है। साधन तो ये सुख का ही है, भाई गृहस्थी बसाना, सब जानते हैं कि बिना गृहस्थी बसाए हुए मन में बेचैनी रहती है, अकेलापन महसूस होता है व्यक्ति को, तो एक से दो हो जाएंगे तो मन लगेगा, सुख मिलेगा, लेकिन कोई भी नहीं कह सकता कि जरूर सुख मिलेगा। हो सकता है आज जो हमारी जिंदगी चल रही है वो ज्यादा सुखी हो, उसके पश्चात ज्यादा दुखी हो जाए, तो अनिश्चय की हालत है या नहीं है ये? इसके बारे में जितना सोचेंगे आप, जितना सोचेंगे उतना ही मन पे प्रेशर बढ़ता रहेगा, क्योंकि निश्चित है ही नहीं कुछ नहीं। कहाँ शादी होगी, कब होगी, किससे होगी, उसका स्वभाव कैसा होगा, उसका परिणाम क्या होगा, क्योंकि हम जो ये कर्म करने जा रहे हैं सुख के लिए कर रहे हैं, लेकिन सुख की इसमें गारंटी कोई है ही नहीं। तो इसीलिए अनिश्चय की हालत में मन जो है वो धीरे धीरे जो है वो संकल्पों के घेरे में घिर जाता है, और बुद्धि जो इन संकल्पों की दृष्टा है या जिस पर इन संकल्पों का प्रभाव पड़ रहा है, यानी मैं, वो दुखी हो जाता हूँ, क्योंकि मैं तो निश्चित परिणाम चाहता हूँ ना, मन अनुकूल या यूं कहें कि इच्छा पूर्ति अनुकूल निश्चित परिणाम चाहता हूँ, और जितनी मन में ये विचार श्रृंखला चल रही है ये दुविधा युक्त है, इसमें फाइनल कोई चीज़ है ही नहीं, तो सारा प्रेशर मेरे ऊपर पड़ रहा है। और ये एक कर्म की प्रक्रिया, मात्र एक कर्म की प्रक्रिया, हो सकता है ये 5 साल चलती रहे, हो सकता है 10 साल चलती रहे, तो अब बताइए मुझे एक सुखरूपी कर्म जो मैं करने जा रहा हूं या जो मैं चाह रहा हूं उसमें कितना अनिश्चय भरा पड़ा हुआ है, जरा विचार करके देखो। तो इसीलिए ये बड़ा जरूरी है इस रहस्य को समझना। तो सत्पुरुष कहते हैं ये एक कर्म की हालत नहीं है, आपके हर कर्म की यही हालत है। आप पिकनिक मनाने की सोच रहे हो सपोज, उसमें भी निश्चित नहीं है कि पिकनिक हो पाएगी नहीं हो पाएगी। एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस तो मैंने बेंगलोर में खुद देखा कि हमने परिवार के साथ पिकनिक मनाने की सारी तैयारी की, सारा सामान वगैरह तैयार करके कार में रखा, और जब घर से प्रोसीड हो गए तब पता लगा किसी फ्रेंड के फादर की हालत सीरियस हो गई है। उसका फ़ोन आ गया कि मेरे फादर की हालत सीरियस है, आप कृपया आ जाओ। अब उसमें से एक मेंबर तो सोच रहा था कि जरूर जाना चाहिए, दूसरा कह रहा था कि भाई उनका परिवार है, उनका सब लोग हैं, वो संभालेंगे। अब हम लोग जो हैं इतनी मुश्किल से तैयारी से निकले हैं, अपनी ये पिकनिक पूरी करके अटेंड कर लेंगे, हमारे ऊपर कोई डायरेक्ट जिम्मेदारी तो है नहीं। तो दो ओपिनियंस थे, लेकिन उनमें से एक ने कहा कि नहीं भाई, उनका जब फोन आया है तो हमको पिकनिक छोड़ के वहाँ जाना चाहिए। खैर पिकनिक का प्रोग्राम कैंसिल हो गया और वो वहाँ चले गए। तो अब बताइए, घर से भी निकल लिए आप, सारी तैयारी भी कर ली, या आपको पता है पिकनिक हो पाएगी नहीं हो पाएगी। ये एक चीज़ का मसला नहीं है, हर चीज़ के बारे में यही है। आप बड़ी ठोक बजाकर अच्छी जगह शादी भी निश्चित कर दो, शादी की तैयारियां भी कर लो, बारात लेकर भी चले जाओ, दूल्हा वहां तक पहुंच भी पाएगा नहीं पहुंच पाएगा ये भी पता नहीं, दुल्हन आपके घर तक आ भी पाएगी है नहीं आ पाएगी ये भी पता नहीं, आपको अगले एक पल का पता नहीं है क्या होने वाला है। तो यदि मैं अपने मन के भरोसे जी रहा हूं कि जैसा मैं ठीक प्लानिंग कर लूंगा और जैसा मैं ठीक सोच लूंगा परिणाम उसका ठीक ही होगा, यही तो है, आप यही तो कर सकते हो, और क्या कर सकते हो। परफेक्ट प्लानिंग भी कर लिया आपने, परफेक्ट एग्जीक्यूशन भी कर लिया उसका, लेकिन नतीजा क्या निकलेगा आपके हाथ में, कुछ भी नहीं। क्योंकि पूरी प्रकृति में हर चीज निरंतर बदल रही है, हर चीज निरंतर बदल रही है। आप अभी अच्छा कर्म करने जा रहे हो, किसी का हार्ट अटैक ही हो गया, ऐसे सदस्य का हार्ट अटैक हो गया कि आपको सारा प्रोग्राम चेंज करना ही पड़ेगा, किसी की मौत ही आ गई बीच में, बस सुगनी हो गई साहब, अब तो हम ये काम कर ही नहीं सकते। इतने कारण हैं चारों तरफ जिसके बारे में आप सोच तक नहीं सकते, और रिजल्ट चाहिए आपको निश्चित। तो इसीलिए जो संसारी जीव हैं, संसारी मनुष्य हैं, वो अपनी करनी पर भरोसा रखते हैं और निश्चित फल चाहते हैं मन के अनुकूल। फिर भी प्रेशर क्यों रहता है? प्रेशर इसलिए रहता है कि ये चाहने के पश्चात भी हमको पता है कि मैं इस मामले में पूर्ण स्वतंत्र नहीं हूं, मेरा ये कर्म बहुत लोगों की सहायता पर निर्भर करता है, बहुत परिस्थितियों की अनुकूलता पर निर्भर करता है जो मेरे हाथ में नहीं है। इसलिए ये बात कही जाती है, होगा वही जो राम रचि राखा। प्रभु ने यदि वैसा प्रारब्ध दिया है, वैसा भाग में सुख लिखा है, तो वो अवश्य मिलेगा। उसको दुनिया कोई ताकत चेंज नहीं कर सकती, क्योंकि सारी सृष्टि प्रभु के अधीन है, मनुष्य के अधीन नहीं है सृष्टि, सारी सृष्टि प्रभु के अधीन है। अभी आपने देखा काठमांडू में भूचाल आया, कितने आयोजन हो रहे होंगे, कितने बर्थडे मनाने की तैयारियां हो रही होंगी, कितने घूमने फिरने की तैयारियां हो रही होंगी, कितने टूरिस्ट वहां गए हुए थे, पूरा का पूरा काठमांडू तहस नहस हो गया। जो बिल्डिंगें 500-500 साल पुरानी थी, जो पिकनिक स्पॉट जो हैं 800-800 साल पुराने थे, सब धराशायी हो गया। पूरा काठमांडू ऐसा लग रहा था, जो मिनी पेरिस लगता था देखने में, वो खंडहर बन गया, एक तरह से खंडहर बन गया। जो बचा भी था वो भी टूटा फूटा, कहीं क्रैक है कहीं कुछ है। अब बताइए कि इतना बड़ा काठमांडू एक देश की राजधानी है, कितनी लोगों ने प्लानिंग की होंगी, कितनी कल्पनाएं बनाई होंगी, कितने मित्र बनाए होंगे, कितने दुश्मन बनाए होंगे, सबके बारे में क्या क्या सोचा होगा। लेकिन एक घटना ने सारी सोच बदल दी। अब नए सिरे से लोगों ने सोचना शुरू कर दिया, नए तरीके से जीना शुरू कर दिया। जिनके बिजनेस बड़े सेट थे वो तो बर्बाद हो गए, जो बर्बाद थे वो आबाद हो गए, उनको काम मिल गए। इसी घटना ने उनको ऐसे काम दे दिए कि जिंदगी बन गई। तो यहां एक पल में क्या होने वाला है किसी को पता नहीं। इसलिए महाराज जी कहते हैं, प्रेमी ये जो मनुष्य है ये दो चीजों में जीता है, सुख की आशा में और दुख के भय में, कि मुझे ऐसा ऐसा करूंगा तो भविष्य में सुख मिल जाएगा। और भय किस बात का, जो मिला हुआ है वो कहीं खराब तो नहीं हो जाएगा, वो कहीं नष्ट तो नहीं हो जाएगा, उसमें कोई परिवर्तन तो नहीं आएगा। जैसे देह मुझे मिली है, आज मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है, तो भय नहीं रहता लोगों को, अरे भाई तेल ज़्यादा ना खाऊं मैं, चिकनी ज़्यादा ना खाऊं, कहीं कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बन गया तो हार्ट अटैक ना हो जाए मुझको, भय नहीं बना हुआ है आपके अंदर। पैसा आपके पास है, बढ़िया से बढ़िया सामग्री खरीद के खा सकते हो आप, दूसरों के पास तो खाने को पैसा नहीं है, आपके पास इतना पैसा है कि बढ़िया से बढ़िया चीज़ खा सकते हो, लेकिन भय बना हुआ है, बढ़िया खाया तो कहीं दिल धोखा ना दे जाए। तो सुख की आशा और अनजाना भय, ये जो दो चीजें हैं इसमें मन आपका हमेशा ही लगा रहता है। तो इसीलिए पूरा का पूरा जन्म आपका अनिश्चय की हालत में व्यतीत होता है। यहां कल की भी किसी को परिवार में, समाज में, देश में, दुनिया में, कल को क्या होने वाला है दुनिया में कोई कुछ नहीं बता सकता, भविष्य वक्ता भी नहीं बता सकते, वो भी धोखा खा जाते हैं। अभी आपने देख लिया यूपी के इलेक्शन में कितने भविष्य वक्ता थे, सारे भविष्य वक्ता फेल हो गए, कितने बड़े बड़े ज्योतिष थे, लेकिन जो रिजल्ट आया इस रिजल्ट के बारे में किसी ने नहीं सोचा था। तो आपको क्या पता दुनिया में क्या होने वाला है। लेकिन यदि सत्पुरुषों के दृष्टिकोण से देखो, वो कहते हैं यहां हर चीज प्री डिसाइडेड है, यहां हर घटना निश्चित है, जो घटना है वो निश्चित है। क्यों निश्चित है, क्योंकि उसका विधान ईश्वर के हाथ में है, उसका विधान ईश्वर के हाथ में है, इसलिए उसको भाग्य विधाता कहा जाता है। जैसे मैंने पास्ट कर्म किए हैं, जैसे लोगों ने पास्ट कर्म किए हैं, जिनका फल उन्होंने भोगना है, वो निश्चित रूप से समय पर उनके सामने वो आएगा, सुख के रूप में और दुख के रूप में। तो ये सुख और दुख की प्रक्रिया के पूरे जीवन भर चलनी है। आपको चाहिए केवल सुख, आपको चाहिए केवल ठीक, आपको चाहिए केवल सफलता। तो खुद सोच के देख लो पूरे जन्म भर ये दिन कभी आपके आने वाले हैं क्या? तो विचार की आंख से ये पता लगता है ये दिन तो कभी जिंदगी में आए ही आएंगे ही नहीं मेरी, और दुनिया में किसी के भी नहीं आएंगे, क्योंकि किसी के आए भी नहीं कभी। जब दुनिया परिवर्तनशील है, जिसमें मेरी देह भी आ जाती है, हर परिस्थिति यहां बदलती रहती है, जिस प्रकार मौसम बदलते हैं, धरती में परिवर्तन होते हैं, जलवायु में परिवर्तन होते हैं, सब परिवर्तन ही हो रहा है, पूरे ब्रह्मांड में निरंतर परिवर्तन हो रहे हैं। तो इस परिवर्तनशील मां जी कहते हैं और नाशवान संसार में ये मनुष्य स्थायी सुख चाहता है जो कि संसार में है ही नहीं। तो जो वस्तु संसार में है ही नहीं उसको प्राप्त करने की मैं जी तोड़ कोशिश करता हूं। तो इसीलिए मेरे अंदर निराशा बनी ही रहनी है, उसे कोई रोक नहीं सकता। संसारी तरीके से यदि मैं जीता हूं तो मेरे अंदर निराशा बनेगी और उसको कोई रोक नहीं सकता। तो इसलिए माई कहते हैं प्रेमी, ये जो सांसारिक जीवन है ये दुखदायी जीवन है। तो वो कहते हैं कि स्थाई चीज का नाम है ईश्वर, और केवल स्थाई नहीं है, वो ज्ञान रूप भी है, वो आनंद रूप भी है, वो शांति रूप भी है। मुझे यही चाहिए, लेकिन मैं धोखे में हूं कि जो चीज नाशवान है, जो चीज परिवर्तनशील है, जो चीज अनिश्चित है, उस पर मैंने अपना जीवन टिका रखा है। तो जो दरिया में नाव पे बैठा हुआ हो और ये चाहे कि नाव हिले ना मेरी, मैं शांति से बैठा रहूं, वो तो मूर्ख है। फिर तो होश ही नहीं है, तो दरिया में बैठा हुआ है। नाव जब चलेगी तो पानी तो निरंतर हिलेगा, नाव भी हिलेगी। तो हमारी जो शांति है, हमारा जो सुख है, वो उसी प्रकार से अस्थाई है जिस प्रकार से नाव की स्थिरता पानी में अस्थाई है। ये जीवन का आपका कड़वा सच है, इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि इसको स्वीकार करो। और सत्पुरुष कहते हैं कि कोशिश इस बात की करो कि ये जो संसार का जो तुमने जो सुख का साधन सोचा था या इसमें जो सुख की आशा की थी, सत्पुरुष जो एनालिसिस आपके सामने पेश कर रहे हैं, जो विश्लेषण आपके सामने पेश कर रहे हैं, उसको सीखो। नहीं सीखते हो तो इसी प्रकार से सारी जिंदगी प्रेशर में जियोगे, बेचैनी में जियोगे, कुछ हाथ नहीं लगने वाला। संसार तो आपकी मुट्ठी से सरक ही रहा है, जैसे मुट्ठी में रेत भर लो और मुट्ठी दबाए रखो, देखोगे धीरे धीरे रेत सब मुट्ठी से निकल गई, वो पकड़े रहने के बाद भी निकल गई। ऐसे ही जो सुख मिला है वो भी सरक जाएगा और आगे कुछ पता नहीं है, सुख मिलना है या दुख मिलना है। इसीलिए जिसकी जिंदगी संसार के सुख पर निर्भर है, वो जिंदगी बेकार की जिंदगी है, क्योंकि जो वस्तु संसार में है ही नहीं तुझे कैसे प्राप्त हो सकती है। तो सांसारिक जीवन बेचैनी का जीवन है, इसलिए सत्पुरुष कहते हैं कि जीने का रास्ता ईश्वर भक्ति का रास्ता है, ईश्वर के मार्ग पर चलने का रास्ता है। जैसे जैसे तेरे अंदर ईश्वर का विश्वास बढ़ेगा, जैसे जैसे तेरे अंदर यह निश्चय आएगा कि ईश्वर अंतर्यामी है, मेरी देह के रोम रोम में रमा हुआ है और उसका अनुभव मैं कर सकता हूं, जिस प्रकार मैं अपने मन का अनुभव कर रहा हूं, उसी प्रकार यदि मैं गुरु के या शास्त्र के अनुसार मैं सोचने की कोशिश करूं, उसके अनुसार चलने की कोशिश करूं, तो अंतर्यामी ईश्वर का अनुभव मैं प्राप्त कर सकता हूं। तो जब उसका निश्चय आता है अंतर्यामी ईश्वर का, जो कि सत्पुरुषों को देखकर आ ही जाता है, सत्पुरुषों के जीवन को देखो तो साफ पता लग जाएगा कि महाराज जी को देखो, कुछ पढ़े लिखे नहीं थे, आठवीं क्लास पास थे, लेकिन मंत्र उनके द्वारा प्रकट हुआ, वाणी उनके द्वारा प्रकट हुई, समतावलास ग्रंथ उनके द्वारा प्रकट हुआ। विचार करके तो देखो, आठवीं क्लास पास विद्यार्थी ये कहाँ से कर लेगा, और जिस एरिया में उनका जन्म हुआ था वहाँ उर्दू पढ़ाई जाती थी, और किसी स्कूल में पढ़े नहीं। तो सारा ज्ञान कहां से प्रकट हो गया? यदि अंदर कुछ है ही नहीं, ये बुद्धि ही सब कुछ है, तो ये ज्ञान कहां से प्रकट हो गया? और मां जी खुद भी कहते थे, प्रेमी ये इनके बस की बात नहीं है, प्रभु जो बुलवा रहा है वो बोला जा रहा है। वाणी तो मुंह से ही बाहर आती थी ना, मुझे तो आवाज निकलती ही थी, लेकिन प्रभु बुलवा रहे हैं वो ये कह रहे हैं। तो सत्पुरुष काय को झूठ बोलेगा भाई, वो तो सत्य ही बोलेगा। तो सत्पुरुष को देखकर भी, ऐसे सत्पुरुष पर विश्वास आने के पश्चात भी हमारी बुद्धि में ये छोटी सी बात नहीं आ रही है क्या कि कारणकर्ता परमेश्वर है? जब वो वाणी बुलवा सकता है, इतने ग्रंथों की रचना करवा सकता है, तो ये बात कैसे झूठ हो सकती है कि सारी सृष्टि का चलाने वाला ईश्वर है? एक देह को जब चला रहा है तो सारी सृष्टि को नहीं चला रहा है। आप खुद देख लो, सारे मनुष्य मिलकर क्या कर रहे हैं, प्रकृति को बिगाड़ रहे हैं, नहीं बिगाड़ रहे हैं? हम सब मिलकर उस भोगों का जीवन जी रहे हैं, हर चीज सिंथेटिक बनने लगी क्योंकि भोग बढ़ गए, प्रकृति में उतनी चीज उपलब्ध नहीं। अब हर चीज आपको लपेटने को चाहिए, रैपर चाहिए आपको, इतना कागज कहां से आएगा? कागज तो लकड़ी से ही आएगा ना, लकड़ी पैदा करने के लिए जगह कहां है? मनुष्य वहां रह रहे हैं, वहां लकड़ी पैदा करने की जगह नहीं बची इतनी सारी, जंगल सारे कट गए, तो कहां से कागज लाओगे भैया? तो प्लास्टिक का जन्म हो गया, पॉलीथीन का जन्म हो गया, उसकी चीजें बनने लगी। अब वो जब यूज करोगे, कहीं तो फेंकोगे उसको, कहीं तो जलाओगे उसको, वो पॉइजन है। पानी के लिए भी पॉइजन, जलाते हो तो हवा के लिए भी पॉइजन। उसी पानी पे, उसी हवा पे आपकी जिंदगी चलनी है। तो जो प्लास्टिक, जो पॉलीथीन आपके सुख का साधन था, आपके दुख का साधन भी तो है, ये तो देख लो। तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे मेरे अंदर सुख की आकांक्षा बढ़ेगी, वैसे ही वैसे मेरे साथ दुख पैदा होता रहेगा, नए से नए दुख पैदा होते रहेंगे। तो इसलिए मां जी कहते हैं, प्रेमी हर सुख दुख में बदल जाता है। ऐसा कोई दुनिया में सुख नहीं है जिसके पीछे दुख ना छुपा हुआ हो। तो बुद्धिमानी इसमें है कि मैं सुख कम से कम भोगने की कोशिश करूं। इसी को महाजी कहते थे, प्रेमी मर्यादा का जीवन व्यतीत करो। जिसके बिना आपका जीवन चल नहीं सकता, वो सुख की या वो जरूरत की तैयारी जरूर करो। खाने के बिना काम नहीं चल सकता, जरूर खाओ, लेकिन शुद्ध और सादा आहार खाओ। पहनने के बिना काम नहीं चल सकता, तो महंगे चीजें मत खरीदो, कम वस्त्रों में गुजारा करने की कोशिश करो। तो मर्यादा की बात करोगे ना, तो मर्यादा में सुख भोगोगे तो दुख भी कम आएंगे आपके पास। मन के अंदर जो चिंता फिक्र होती है वो भी कम होगी आपके पास। तो इसीलिए वो कहते हैं कि सांसारिक जीवन तुम मर्यादा का व्यतीत करो, ज्यादा सुख भोगने की कोशिश मत करो, क्योंकि संसार में सुख है नहीं। यदि कोशिश करोगे, सोचोगे, तो समझ लीजिए उतने ही बड़ा दुख की तैयारी कर लो, वो आपके पास तैयार हो रहा है आने के लिए। जो व्यक्ति जितने बड़े सुख की सोच रहा है, उतना ही बड़ा दुख उसकी जिंदगी में तैयार हो रहा है आने के लिए। तो उसने बड़ी बेचैनी की जिंदगी व्यतीत करनी ही करनी है, इससे कोई बचा नहीं सकता उसको। मैथमेटिकल टर्म में बात किया है तो कहना चाहिए, दुख इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सुख। और सुख की स्थिरता नहीं है, इसीलिए वाणी कह रही है, जो सुख स्थिर ना रहे वो तो दुख का रूप, ऐसे घने कलेश से कैसे पावे छूट। ये घना कलेश है, सुख दुख का चक्र, ये घना कलेश है जीव के लिए। इससे कैसे छुटकारा पाना है ये सोचना था तूने इस मानुष जन्म में, ये तूने सोचना है। इसके लिए ईश्वर तेरी मदद कर रहा है, गुरु रूप में संसार में आकर अवतार लेकर तेरी मदद कर रहा है, ताकि तुझको शांति मिल जाए, सुख के मोह से तू मुक्त हो जाए। क्योंकि संसार में ये सब चीज उलट पलट चलनी ही है, क्योंकि इसका नाम ही परिवर्तनशील संसार है, नाशवान संसार है, जिसमें आपकी देह भी शामिल है। तो यदि व्यक्ति सत्पुरुष के मार्गदर्शन के अनुसार इसी प्रकार संसार का निर्णय और अपने बारे में निर्णय करता है, तो वो भी इसी निर्णय पर पहुंच जाता है कि जो सत्पुरुष कह रहे हैं वो बात बिल्कुल ठीक है, मेरा कल्याण इसी में है कि मैं गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार सोचूं और उसके अनुसार जीवन बनाऊं और उसके अनुसार जीवन जीने की कोशिश करूं। तब आपको पता लगता है कि मनुष्य जन्म अंतर्यामी ईश्वर को जानने के लिए मिला है। बुद्धि मन के संकल्प से तो मुसीबतें फंसी रहती है, सारी जिंदगी मुसीबतें फंसी रहती है, लेकिन अंतर्यामी ईश्वर के बारे में जो सोचती है उसको जानने की कोशिश करती है, उससे जब प्रेम करने की कोशिश करती है, जैसे कि हम अपने मन की इच्छाओं से प्रेम करते नहीं करते, ये इच्छा मेरी पूरी होनी चाहिए, पसंद कर लिया आपने अपनी इच्छा, एक लग गया उसके पीछे, पता ही नहीं है वो सुख देगी या दुख देगी। लेकिन ईश्वर प्राप्त करने की, ईश्वर को जानने की इच्छा आपने अंदर यदि पैदा कर ली गुरु के वचनों को समझ कर, तो ये इच्छा आपको केवल आनंद ही देगी, दूसरी चीज में है ही नहीं, गारंटी है वो है ही आनंद रूप, जिसमें परिवर्तन नहीं है, और वो ऐसी स्थायी चीज है कि इस देह की मृत्यु के पश्चात भी वो तेरा संग नहीं छोड़ेगी, क्योंकि तेरी मौत नहीं है, ईश्वर की भी मौत नहीं है। देह की तो मौत है, जीव की मौत का है, जीव तो अपने मन की पोटली साथ लेकर नए शरीर को प्राप्त कर लेता, तो मन की पोटली में है क्या, इसके सारे संस्कार हैं, इसके सारे कर्म फल ड्यू हैं, इसका सारा प्रारब्ध है, ये सब संग लेके जो है वो नए शरीर की प्रभु रचना कर देते हैं इसके लिए, उसमें ये फिर वो जो बंडल बांध के आया था उसी बंडल के अनुसार सारी क्रिया इसकी जिंदगी की चलनी, इसको ईश्वर का भरोसा ही नहीं। जैसे किसी इंजीनियर ने एक सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया और सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में उसने लोड कर दिया, तो बताओ कंप्यूटर क्या बताएगा, वही तो दिखाएगा ना जो सॉफ्टवेयर में फीड है। तो आपका जो मन है ये सॉफ्टवेयर है आपका, जो साथ लेके जाते हो और नए शरीर में उस सॉफ्टवेयर के अनुसार सारी क्रियाएं आपकी चलती है। तो जिसके अंदर अपनी करनी पर भरोसा है, ईश्वर पर भरोसा ही नहीं है, तो धोखा खा जाएगा, उसने धोखा खाना ही खाना है, कौन रोक सकता है उसको, फिर सारी जिंदगी में यही सोचता रहेगा ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, इसी को राग द्वेष कहते हैं। तो राग द्वेष में ये पूरी जिंदगी निकाल देता है, ऐसे बेचैन मन को लेकर ईश्वर की क्या याद करेगा, ये विचार करके तो देखो जरा। तो ईश्वर को प्रेम से वही जीव याद कर सकता है जिसके अंदर ये पक्का ईश्वर विश्वास है कि पूरी जिंदगी ईश्वर के अधीन है, दुनिया के अधीन नहीं है। कौन लोग मुझे मिलेंगे, कौन मेरी सहायता करेंगे, कौन मेरे दुश्मन बनेंगे, ये सारा प्रारब्ध का डिसाइड करता है। तो इसीलिए जितने भी भक्त हुए उनकी हालत देख लो, वो ईश्वर के अधीन होकर जिए। जितने गुरुओं का जीवन आप जानते हो केवल ईश्वर के अधीन होकर जिए, सबका मालिक एक है। इसका नतीजा क्या निकला, उनका मन हमेशा ईश्वर की याद में लगा रहा। जब करने वाला ईश्वर है तो याद तो उसी की आएगी, जो देने वाला है जो करने वाला है याद उसी की आती, याद रखो। तो उनके मन के अंदर निरंतर प्रभु की याद बनी रही, उन्होंने इस देह के अंदर ही ईश्वर को पा लिया, उसके पश्चात वो ईश्वर इस अपनी देह के प्रति और संसार के प्रति वो निश्चिंत हो गए बिल्कुल। उन्होंने अपने अनुभव से जान लिया कि ये देह और संसार एक ही चीज है और ये परिवर्तनशील है, नाशवान है, इसीलिए इसको वो प्रकृति कहते हैं, ये प्रकृति की चीज है और ईश्वर प्रकृति का मालिक है, ईश्वर प्रकृति से ऊपर है। तो जीव भी इस देह के बंधन से उसी प्रकार मुक्त हो जाता है जिस प्रकार सत्पुरुष इस देह के बंधन से जीते जी मुक्त हो गए। महाराज जी खुद कहते थे, भक्त बनारसीदास जी जब उनके साथ आ रहे थे जंगल से, पहाड़ से उतर रहे थे वो, तो महाराज जी ने कहा था, बनारसी इस समय देह ऐसे लग रही है जैसे कोई छाया संग चल रही हो। हमें कितना गहरा मोह है देह से अपने, और रियलिटी हमारी है। गुरु कह रहा है कि इस समय देह ऐसे लग रही है जैसे कोई छाया संग चल रही हो, और ये रियलिटी है आपकी। जब जीव का ये मोह भंग होता है और ईश्वर में उस जीव की स्थिति होती है, उस समय ये प्रैक्टिकल उसका अनुभव होता है। ये एक लिफाफा है जो मेरे ऊपर चढ़ा हुआ है, एक खोल है जो मेरे ऊपर चढ़ा हुआ है। तो देह का मतलब यही होता है। संस्कृत में कहते हैं कि देह धातु से देह शब्द बना है, और देह का मतलब होता है प्लास्टर चढ़ा देना, लेप चढ़ा देना। तो जीव के ऊपर ये लेप चढ़ा हुआ है, ये खोल चढ़ा हुआ है बस, और मैं इसको अपना स्वरूप समझूं। तो कितनी गहरी अज्ञानता में जी रहा हूं मैं। दुनिया की कोई साइंस, कोई टेक्नोलॉजी, कोई विद्या इस मोह को भंग कर सकती है? आप कभी नहीं कर सकते। ईश्वर विज्ञान है यही आपके इस मोह को भंग करता है। तो इसीलिए सत्पुरुषों के जीवन को बारीकी से देखे बिना, उसके बारे में सोचे बिना, आप इस निर्णय पर कभी पहुंच ही नहीं सकते कि देह मेरा स्वरूप नहीं है। देह का अहंकार करते हो, देह के लिए कर्म करते हो, देह की ही पूजा करते हो, देह के लिए ही दुश्मनी करते हो, देह के लिए ही मित्रता करते हो, सारी जिंदगी देह के लिए जीते हो, जबकि देह साधन था ईश्वर प्राप्ति का। तो जैसे जैसे तू ईश्वर मार्ग पर चलता है, तेरे अंदर ये विश्वास बढ़ता रहता है, गहरा होता रहता है कि कारणकर्ता परमेश्वर, सकल जगत का कर्ता, जानो एक भगवान, आप अकर्ता हो रहो, यही सार है। इस ज्ञान में स्थित हो जाता है जीव कि ईश्वर ही करता है और मैं अकर्ता हूं। ये कब अनुभव होता है जीव का? जब ये देह को अलग करके देह का जब ये दृष्टा बन जाता है, तो अंदर ईश्वर का भजन करते करते ऐसी उसकी स्थिति हो जाती है कि इस देह से वो वास्तव में अलग ही हो जाता है, क्योंकि वो अलग है ही। यदि अलग नहीं होता तो देह के मौत के साथ जीव की मौत हो जाती है, लेकिन जीव तो बच जाता है, पुनर्जन्म होता है, जिसका अनुभव हम स्वप्न में लगभग रोज ही करते होंगे। स्वप्न में नई देह पैदा हो जाती है, उससे मैं कर्म करता हूं, उससे भोग विलास करता हूं, उससे सुख दुख भोगता हूं, ये देह मेरी सोती रहती है। जागने के पश्चात कह देता हूं, बस इतना ही कहता हूं कि वो स्वप्न था, ये सोचने की कोशिश नहीं करता कि देह तो मेरी ये है, ये मेरा स्वरूप है। तो वो देह क्या थी? वो देह तो थी, वो थोड़ी देर के लिए थी, लेकिन थी तो वो, उसमें मैंने कर्म भी किए, उसमें सुख दुख का अनुभव भी किया है, तो ये देह मेरा स्वरूप कैसे हो सकती है फिर? अरे दो देह का अनुभव तो आपको है, ये जागने के बाद इस देह का अनुभव है, सोने के बाद उस देह का अनुभव है, और दोनों देह से आपने कर्म किए हैं, दोनों देह से सुख और दुख भोगे हैं, तब ये होश में नहीं आता ये दो देह में था कौन? मैं ही तो था। तो मैं दो देह से काम करने वाला, दो देह से जीवन जीने वाला देह हूं या कुछ और हूं? अपने बारे में वैसे विचार करके देखूं जैसे शास्त्र हमारा मार्गदर्शन करते हैं, तो निर्णय साफ हो जाता है, इसमें संशय की क्या बात है? ये तो मेरे अपने अनुभव की बात है। तो अपने ही अनुभव से मैं सीखने को तैयार नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मैंने दुनिया वालों के तरीके से सोचना शुरू कर दिया है, सत्पुरुषों के अनुसार सोचने की जरूरत मैं नहीं समझता, तो इसलिए धोखा खाता हूं। पूरी जिंदगी मनुष्य प्रेशर लेके जीता है। मैं तो अपना बचपन देख लूं, मैं बचपन में एक ही तमन्ना रहती थी, बड़े लोगों को देखते थे, उनको खेलने की स्वतंत्रता होती थी, जब मन चाहे खेलते थे, हमको पकड़ पकड़ के घर में बंद कर दिया जाता था कि बाहर जाएगा तो चोट लग जाएगी, तो तो मन करता था जल्दी से बड़े हो जाएं। फिर स्कूल जाते देखते थे, हमको भी स्कूल जाने को मिले, क्योंकि अच्छा लगता था कि शायद स्कूल जाएंगे तो मौज मस्ती आती होगी। स्कूल में गए तो पता लगा पढ़ना पड़ता है, अब पढ़ाई मुसीबत हो गई। और फिर ये सोचते थे कि हर साल कि जल्दी से स्कूल पूरा हो तो आज़ाद हूँ। स्कूलिंग पूरी हुई, कॉलेज लाइफ पूरी हुई, तो फिर बड़े हो गए तो अरे ज़िंदगी की फिक्र आई, अरे कमाएंगे, कमाना पड़ेगा, बिना कमाए तो गुजारा ही नहीं होगा, शादी नहीं होगी, नौकरी की तलाश, नौकरी का प्रेशर, नौकरी भी मिल गई अब तो घर बसना चाहिए, शादी होनी चाहिए, नहीं बिना उसके सुख कहाँ मिलेगा, शादी का प्रेशर, शादी हो गई तो बच्चों का प्रेशर, बच्चे हो गए तो उनका भविष्य का प्रेशर, प्रेशर से मुक्त कहाँ हो गया। और जो मेरे लिए भविष्य के लिए प्रेशर बनने वाला है उसमें मैं एंजॉयमेंट देख रहा हूं और उसकी प्लानिंग कर रहा हूं, पूरी जिंदगी यही तो करता रहा मैं, मिला क्या मुझे। पूरी जिंदगी को मैंने एक पैकेज के रूप में कभी नहीं सोचा, एक एक घटनाक्रम को मैं सोचता रहा और धोखा खाता रहा। इसीलिए ये मत समझिए कि आपकी ये हालत है, पूरी दुनिया की यही हालत है, हर मनुष्य इसी निराशा को लेकर, इसी परेशानी को लेकर, इसी भय को लेकर जी रहा है, दिखाता ऐसे कि मैं बड़ा सुखी हूं, तुम मुझसे नीचे हो मैं तुमसे ऊंचा हूं, तुम दुखी हो मैं सुखी हूं। ये खोखला विज्ञान है, ये केवल दिखावा है, क्योंकि सत्पुरुष ये बात नहीं कहते कि राजा दुखिया, राणा दुखिया, दुखिया कुल संसार, तो डंके की चोट पर कह रहे हैं ये बात। मैं झूठा हूं, मैं अपने बारे में भी किसी को सत्य नहीं बताता, ढक लेता हूं फट से। कोई पूछेगा क्या हाल है, हाँ साहब बड़ा ठीक है, बिल्कुल सब ठीक चल रहा है, दिल की जानता हूं क्या चल रहा है, महा झूठा हूं मैं। तो जो सत्पुरुष बयान कर रहे हैं वो सही है, इसलिए मनुष्य को ईश्वर के भरोसे ही जीना चाहिए। और कर्म मैंने संसार में कैसे करने हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सत्पुरुषों के मार्गदर्शन से मैंने सीखना चाहिए, दुनिया की नकल करके नहीं। तो जो व्यक्ति भी सत्पुरुषों के मार्गदर्शन के साथ चला, उसने दिल का चैन पाया, और उस पूर्ण चैन का नाम है मोक्ष, उस पूर्ण चैन का नाम है ईश्वर दर्शन। तो जिंदगी की सफलता इसमें है, यदि इस सफलता की ओर नहीं बढ़ते तो मानसिक बेचैनी रूपी विफलता की ओर हमको बढ़ना ही पड़ता है, और सारी जिंदगी निराशा में कट जाती है, कुछ हाथ नहीं आता। इसलिए पुरुष के मार्गदर्शन के अनुसार सोचें, उसके अनुसार चलें, इसी में जीवन की सफलता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाला।